जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम त्वयि सति परमात्मन् माद्रशान् मोहमुग्धान् कथम तनुवशत्वान् बुद्ध केशान् यजेहम् सुगत मगधरं वा वागदीशं शिवं वा जित भवमविवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा लमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णान् दंशन सहावम् वोच्छामि नियम सारम् केवली सुद केवली वणिदम् आचार्य कुंदकुंद देव की अनुपम रचना समय सारवत दृष्टि का विषय दिखाने वाली टीका सहित निज भावना के लिए लिखी गई ये नियम सार परमागम शास्त्र यहां विराजमान है। इस पर अपन ने अभी पूज्य गुरुदेव श्री का गाथा 137 पर अपन ने प्रवचन सुना है। उसके दो तीन मार्मिक बिंदुओं पर अपन खास चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया गया है, गुरुदेव श्री का व्याख्यान मल्टीविटामिन टैबलेट जैसा होता है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय की द्रव्य और पर्याय की अति सूक्ष्म गहन चर्चा, जो वास्तव में आत्मार्थी की खुराक है, उसकी बात भी आती है, वैराग्य की बात आती है, आत्मानुभूति की प्रेरणा की बात आती है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति की बात आती है, यानी आत्मार्थी को जो जो चीजें चाहिए व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग सहित, वो सब माल एक व्याख्यान में मिल जाता है। इसी शैली में आप देखिए, जो आपके सामने स्क्रीन पर होगा पेज नंबर 246, उसके एक दो पॉइंट पर अपन चर्चा करते हैं। इसका बीच का पैराग्राफ है, वास्तव में जैसा गुरुदेव का चिंतन का लेवल है उनको वैसा ही माल मिल गया। असल में जैसे कोई सेल्समैन बहुत होशियार हो लेकिन माल में ही दम नहीं होवे तो वो सेल्समैन क्या करेगा, क्या बेचेगा? आखिर माल भी स्टैंडर्ड का है, सर्वज्ञ की पैड़ी का है, आचार्यों की पैड़ी का है, तो जितना ऊंचा माल है उतने ही कुशल सेल्समैन है। ये दोनों का बहुत बढ़िया सुमेल है। अच्छा माल हो तो सेल्समैन को भी बेचने में मजा आती। अब गुरुदेव को आनंद इतना क्यों आता है, बारंबार इतना प्रमोद, इतना हा हा, इतना उछाला क्यों आता है? वो उन्हें अपने कोई प्री प्लान, उन्हें अपनी शैली ऐसी डेवलप की हो कि इससे लोगों को इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, ये उम्मीद तो अपन गुरुदेव से कर ही नहीं सकते कि वो पब्लिक पर इफेक्ट डालने के लिए कुछ बोले। वो माल ही ऐसा है, जिसने समझ लो हीरा और जौहरी दोनों का सुमेल है। और ज्यादा क्या कहें, एक बीच के पैराग्राफ में एक शब्द आया है पेज नंबर 246 पर, निरवशेष पणे अंतर्मुखाकार, सर्वथा अंतर्मुख जेनु स्वरूप छे एवी एवी सू एवी परम समाधि। परम समाधि का क्या स्वरूप है? दुनिया में देखो समाधि लगाने वाले बाबा बहुत चर्चा इनकी आती है, पर किसमें समाधि लगाना, किसमें एकाग्र होना, ये जाने बिना क्या ध्यान करेगा, काय की समाधि लगाएगा? तो स्वयं टीकाकार मुनिराज ने इसमें लिखा है कि निरवशेष यानी कुछ भी बाकी नहीं रहा, विकल्प का एक कण भी बाकी नहीं रहा। इस अवसर पर मुझे वो समोसरण स्तुति की पंक्ति याद आई, अंकुर एक नथी मोह तण मोरयो ज्या, निरवशेष अज्ञान अंश बड़ी भस्म रूपे थयो ज्या, आनंद ज्ञान घन वीर्य अनंत छे ज्या, त्या स्थान मांगू जिन ना चरणाम्बुजो मां। शायद परसों मैंने कहा था, कल या परसों, ये समोसरण स्तुति पंडित जी द्वारा, हिम्मत भाई द्वारा लिखे गए साहित्य में बहुत अनुपम निधि है। तो जब भी समोसरण में खड़े होवे अपन, तो यहां ही मैं तो एक क्रम ऐसा बनाया है, मेरा बंगला सबसे लास्ट में है देवलाली में, वहां से मंदिर आने में 2.5 मिनट लगते हैं मुझे। तो अकृत्रिम चैत्यालयों की एक संस्कृत में अर्घावली है, अकृत्रिम चैत्यालयों के लिए, और उसे नंदीश्वर विजय आदिवाद सब उसमें आ जाता है। हाँ? तो वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना पढ़ेंगे, और जो समोसरण के सामने खड़े हुए तो पहला श्लोक पहला काव्य वो आता है, चे चतुरांगुल जीन राजे इंद्रो नरेंद्रो मुनिराज पूजे, जेवू निरालंबन आत्मद्रव्य तेवू निरालंबन जीन देह। इसका शब्दार्थ तो आप गुजराती हैं तो आप समझ गए होंगे, इसमें एक चमत्कार है, वो चमत्कार बहुत मार्मिक है। वो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर हैं, ऊंचे चतुरांगुल जीन राजे विराजमान है, शोभित है, इंद्रो नरेंद्रो मुनिराज पूजे, इंद्र नरेंद्र मुनिंद्र सब उनके सामने नतमस्तक हो रहे। अभी वो 4 अंगुल ऊपर क्यों कैसे हो गए, हो ये जादू कैसे हो गया है, वो उसको टच क्यों नहीं करते सिंहासन को? वो इसलिए 4 अंगुल ऊपर हैं कि वो ये बताना चाहते हैं कि मेरा भगवान आत्मा निरालंबी हो गया। अभी देखो कायदे से तो जो दृश्य पदार्थ होते हैं उसको उदाहरण बनाया जाता है और आत्मा को सिद्धांत बनाया जाता है, ऐसा चलन है। उदाहरण जो है वो नॉन फैक्टर होता है ज्ञात, और सिद्धांत जो है वो अननोन फैक्टर होता है अज्ञात होता है। इसमें उल्टा है, इसमें आत्मा को उदाहरण बनाया है और शरीर को सिद्धांत बनाया है। जीवू निरालंब, जीवू किसके साथ लगता है, उदाहरण के साथ के सिद्धांत के साथ, जीवू जेवी रीते, समझ में आया है? जिस प्रकार भगवान का आत्मा निरालंबी हो गया, कैसे हो गया? ज्ञान के लिए ज्ञेय की अपेक्षा नहीं, ज्ञान के लिए ज्ञानावरण के क्षय की अपेक्षा नहीं, आनंद के लिए 5 इंद्री के विषय की अपेक्षा नहीं, समझ में आया? 5 इंद्री के विषय के बिना अकेले आत्मा में से ज्ञान आनंद प्रकट हुआ, इसलिए आत्मा निरालंबी हो गया। જેવું નિરાલંબન આત્મદ્રવ્ય તેવું નિરાલંબન જીન દે. જિસ પ્રકાર ભગવાન કા આત્મા નિરાલંબી હૈ ઉસી પ્રકાર ઉનકા દેહ ભી નિરાલંબી હો ગયા. તો દેહ કી નિરાલંબનતા કા સ્વરૂપ આત્મા કે નિરાલંબનપને સે સમજાયા. इसमें ये बात मुझे क्यों याद आई, अंकुर एक नति मोह तणु रयो झ्या, ये बारहवें गुण स्थान का चित्रण है. उसके बाद में वो आता है ऊंचे चतरांगुल जीने राजे. हमने बहुत पढ़ी सोनगढ़ में समूसरण स्तुति जो है, कई दफे समझ लो इसका पूरा पाठ किया, इसका हिंदी भी किया इसका, और हिंदी एक भी छंद मुझे याद नहीं, मुझे सब गुजराती के याद है जितने. अंकुर एक नथी मोह तणो रयो ज्या, मोह का अवशेष अंतिम अंश भी बचा नहीं, ये क्षय हो गया पूरा. अज्ञान अंश बड़ी भस्म रूपे थयो ज्या, अज्ञान बारहवें गुण स्थान तक अज्ञान लेता है, जानते हैं. देखो अज्ञान शब्द के मुख्यतया दो अर्थ होते, एक तो भेद ज्ञान नहीं है, आत्मा की पहचान नहीं है, जो अपनी चर्चा चलती है. हाँ, तो अज्ञान यानी मिथ्या दृष्टि है तो अज्ञानी, समय सार में अज्ञानी का ये परिभाषा है. दूसरा सिद्धांत में जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक अज्ञानी, यानी क्षयोपशम ज्ञान जब तक है तब तक अज्ञानी है. तो बारहवें गुण स्थान में मोह का तो एक अंकुर भी नहीं रहा, और अज्ञान का अंश बाकी था वो भी जल करके भस्म हो गया. समझ में आया. अज्ञान अंश बड़ी भस्म रूपे थयो ज्या, फिर क्या हुआ. आनंद ज्ञान घन वीर्य अनंत छे ज्या, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर प्रकट हो गया. तो अब आप क्या चाहते हो. त्यां स्थान मांगू जिन ना चरणाम्बुजो मां. तो और भी दो छंद, मुझे तो लास्ट वाला भी बहुत बढ़िया लगता है. दैवी समो शरण मान ही राग किंचित, धूली मलीन पण ज्ञान ही द्वेष किंचित. ये तो क्लियर है ना. देवों के द्वारा रचा गया मणि रत्नों का समो शरण भगवान को कितना अच्छा लगता होगा. वाह यार, जैसे मैं यहाँ हाल में बैठ के करता हूँ तो बड़ा गौरव होता है, इतने अच्छे हाल में मुझे प्रवचन करने का चांस मिला. भगवान को सोचते होंगे यार क्या बढ़िया समोसरण बनाया, ऐसे समोसरण में बैठ के मुझे प्रवचन करने का अवसर मिला. दैवी समोसरण मां नहीं राग किंचित, अरे सारी दुनिया के प्रति राग नहीं है, समोसरण के प्रति क्या होगा. और धूली मलीन, जो गुरुदेव बोले ना गुंड बिस्टा खाए छे आखी जिंदगी, वो भगवान की ज्ञान में झलकती है. तीन लोग तीन काल बढ़ती बिस्टा, जितनी भी समझ लो, ये तो समझ लो अब तिनंचों में होती है, मनुष्यों में होती, कर्म भूमि वालों में, औदारिक शरीर वालों में, समझ में आया, उनके ज्ञान में नहीं झलकती होगी. तो ऐसा लगता है अरे यार ये क्या आ गया. कोई भी गेह के प्रति द्वेष नहीं, कोई भी गेह के प्रति राग नहीं. धूली समो शरण केवल गेय जे मां, ऐसा ज्ञान जिसमें चाहे धूल हो चाहे समो शरण हो, मात्र गेह है. ते ज्ञान ने नमन हो जिन जी हमारा, हे जिनेन्द्र परमात्मा मैं ऐसे ज्ञान को नमस्कार करता हूं. बोलो कितना वितरागता है, कितनी गेय निरपेक्षता है, कितना तत्व ज्ञान है, कितना निरालंबीपना है. ये पूजा के हार्डवेयर में अध्यात्म और सिद्धांत का सॉफ्टवेयर भरा हुआ होता है, उसको सही सेटिंग करनी पड़ती है. वो फाइल खुलना चाहिए भला है. उसकी सेटिंग सही होना चाहिए भाई. ऐसे इसमें अंतर्मुख जैनु स्वरूप छे, सहजानंद प्रभु सहज स्वरूप सहज सत्ता तेनु तेना तरफनु अंतर्मुख वलन. सहज सत त्रिकाल सत भगवान आत्मा, उसके सन्मुख अंतर्मुख वलन की बात है. फिर बाद में उसका नास्ति से अर्थ किया, नास्ति पक्ष बताया। देखो आ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार रत्नत्र तो विकल्प राग छे अंतर्मुख परम पारिणामिक स्वभाव भाव ज्ञायक भाव अंतर्मुखाकार आकार यानी स्वरूप। क्या आकार माने स्वरूप, तो जो ज्ञायक स्वयं अंतर्मुख स्वरूप वाला है यानी एक समय की पर्याय में भी आता नहीं है ये तो गुरुदेव के प्रवचन का मूल माल है। ये पर्याय परिणमती है सोगानी जी ने परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह गया, तो पर्याय ने अड़तो नहीं खरेखर भगवान आत्मा पर ने तो शू बात करवी है। तो पर्याय पण बहिर्स्वरूप छे ये गुरुदेव ने बोला इसमें भगवान त्रिकाल शुद्ध चैतन ज्ञान आनंद अनादि घन प्रभु। शब्द बहुत सरल है भाई लेकिन भाव भाषण के लिए अभ्यास करना चाहिए। एक जगह इसमें आया है अभ्यास करने की बात समझाए छे। अंतर्मुख आकार तो एकलो द्रव्य स्वभाव चैतन आनंद स्वरूप छे तेनु अंतर्मुख स्वरूप। अंतर्मुख का मतलब वो चीज अपने स्वरूप में ही रहती है, कभी बाहर नहीं आती। फिर इसके नीचे ही आया जो मैं बोलने वाला था ना, इसमें एक सेंटेंस आया है नीचे से चौथी लाइन में, आमा लोड़ा थी क्यारे नवरू थबू। ये लोड़ा क्या थी अभी मुझे मालूम है। ये भावनगर के एक मुमुक्षु भाई थे जय हिम्मतलाल, समुसरण के पास में उनका बिल्कुल अपने मंदिर के बाउंड्री में कोने में उनका मकान था, उनका लोहे का व्यापार था। तो वो आते थे सोनगढ़ रहते थे बहुत हैं तो कभी गुरुदेव किसी पे लक्ष्य जाए ना, शांति भाई पे लक्ष्य जाए तो हीरा में काई न थी, मधु भाई पे लक्ष्य जाए तुम्हारा हांगकांग में काई न थी हैं उनके नेचर में था। ऐसा कहके वो श्रोताओं से अपना तादात्म्य बना लेते थे। वो ऐसा नहीं कि कोई बड़ा लेक्चर दूर दे रहा हो और पब्लिक खाली सुन रही हो, कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं। वो मानो पूरे श्रोता समुदाय में व्याप्त हो जाते, ऐसे दो चार जो परिचित उनके थे, सब वहां के उनके परिचित लोग थे हाँ। फिर अभी उसमें से आया बाहर थी तो बधो नवरो थयोज छे, नवरो छे बायनो त्याग एमां नहीं, फक्त अंतरमां विकल्प अने बहिर्मुखी पर्याय जे छे एने अंतर्मुखाकार करवी। अपन अब तो दुकान बंद करना है, अब तो धंधा छोड़ना है, दो चार साल में सब बाइंड अप करना है, फिर सोनगढ़ रहना है कि देवलाली रहना है कि कोई ऐसे स्थान में रहना है। भावना अच्छी है भैया, निवृत्ति की भावना वो कल्याणकारी, पर वो एकांत में रह के तू करेगा क्या, इसकी तो प्लानिंग कर ले समझ में आया। फिर देखो सच, अगर बिना तत्व रुचि के और ये स्वाध्याय की रुचि के बगैर अगर मात्र बाह्य निवृत्ति ले लेगा तो बहुत स्वयं दुखी हो जाएगा, दूसरों के दुख में निमित्त बनेगा समझ में आया। फिर वो पॉलिटिक्स में पड़ेगा, फिर राग द्वेष में पड़ेगा, फिर निंदा में पड़ेगा, फिर ये बल्ब यहां नहीं लगना चाहिए, ये कुर्सी यहां नहीं रखना चाहिए, यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, वो दुकान बदल जाएगी, धंधा वही का वही रहेगा इसलिए पहले कर्ता पने का बोझा मिटे उसके लिए, मतलब वो कोई सम्यक दृष्टि पहले हो जाए फिर निवृत्ति ले रहे, ऐसा मैं नहीं कहता। बिना सम्यक के भी आप निवृत्ति ले सकते हैं बाहर से, मगर क्यों लेना, फिर करना क्या। ऐसी कई कहानियां मैंने पढ़ी हैं कि लोग नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो पहले दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, कभी जल्दी तैयार होना, जल्दी भागना, ये कुछ नहीं, अभी बिल्कुल आराम से चाय पियेंगे, अखबार पढ़ेंगे, रेस्ट करेंगे। एक दो दिन तो ऐसा लगता है जैसे नंदन वन में घूम रहे हो, लेकिन तीसरे दिन से उनकी बहू ने कहा पापा जी सब्जी लेकर के आ जाओ समझ में आया ना, वो खुद कोई चैन नहीं पड़ती, ऐसा लगता है कि अभी मैं बिल्कुल बुढ़ा हो गया, बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। तो बहुत से लोग रिटायरमेंट लेने के बाद भी दूसरी जगह नौकरी ढूंढते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो वो रद्दी पेपर ला करके लिफाफा बना के बेचेगा, पहले ऐसा चलता था बहुत, ऐसा है भाई। निवृत्ति देखो, निवृत्ति का स्वरूप गुरुदेव ने बताया, विकल्प अने बहिर्मुखी पर्याय जे छे है लास्ट में बिल्कुल एने अंतर्मुखाकार करवी। हा हा, जे पर्याय छे वस्तु बे रूपे, द्रव्य अने पर्याय। आप देखिए गुरुदेव के चिंतन में प्रमाण ज्ञान का विषय और शुद्ध न्याय का विषय दोनों की अद्भुत संधि रहती है। द्रव्य पर्याय आत्मक वस्तु है, कोई पर्याय नथी एम नथी। आप उनके ग्यारहवीं गाथा का प्रवचन सुनेंगे जिसमें वो व्यवहार अभूतार्थ है, शुद्ध न्याय भूतार्थ है, ये वाली बात आती है। तो वो बारंबार कहते हैं देखो पर्याय का सर्वथा निषेध करेगा तो वेदांत हो जाएगा, निश्चयाभास हो जाएगा, इसलिए पर्याय का सर्वथा निषेध नहीं करना। यानी पर्याय सत एक समय की सत है और अपने सत कारक से उत्पन्न होती है ऐसा मानना, समझ में आया, पर उसके लक्ष्य से धर्म नहीं होता। ये माल मुद्दे की बात तो ये है, ये पर्याय ऐसी है, पर्याय ऐसी है, मेरी पर्याय में तो राग है, देखो मुझे तो फोड़ा हो गया है, मुझे तो फोड़ा हो गया है, इसमें तो पस पड़ गया है, ये तो बहुत दुखता है, ऐसा करने से ठीक होता है? जाने लो प्रयोजन वांच है। ये जितना भी आजकल हजारों लाखों रुपया निदान में खर्चा होता है, डायग्नोसिस में, ये बीमारी क्या है ये तो पकड़ में आवे। अब अभी पकड़ में आ गई, रिपोर्ट आ गई, डॉक्टर ने बता दिया थर्ड स्टेज की डायबिटीज है या थर्ड स्टेज का कैंसर है, अभी क्या करना? उसकी पूजा करना, उसकी माला जपना, उसको याद करना, उसी में रमना, क्या करना? वो जान करके उसको दूर करने का जो उपाय है वो करना। ऐसे पर्याय में राग है, पर्याय में दुख है, पर्याय में ऐसा है वैसा है, अरे वो जाने लो, जाना हुआ प्रयोजनवान है बस। अब उससे लक्ष्य हटाकर जिसमें वो पर्याय नहीं है ऐसे त्रिकाल अखंड एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसका अवलंबन करना। इतना सरल और संक्षिप्त मार्ग है। यहाँ लिखा है साथ लिप्त में, स्व में वस, पर से खस, तुम कूने टच। क्या क्या प्लानिंग है साहब, आप लिफ्ट में भी उतरो तो तत्व चिंतन करते हुए उतरो है। ये साइड में लिखा है शायद, सत ए दूर नथी पण दूर दिखाए छे एज जीवनो मोह छे। राम बाण डायलॉग, राम बाण समझते, रामचंद्र जी का बाण कभी चूकता नहीं। जो जिसके ऊपर लक्ष्य करके रामचंद्र जी बाण छोड़े वो उसको जाके लगे ही लगे, ऐसा राम बाण है। सत इतले पोते भगवान आत्मा, दूर ने दूर है के पास है का सवाल ही कहां, पोते है स्वयं ही है तो दूर होने का तो सवाल ही नहीं है। छता मारे आत्मा जोइए ये मोह छे, मधु भाई मुझे आत्मा प्राप्त करना है, ये भावना तो पुण्य बंध का कारण है, ये तो व्यवहार की बात है। आत्मा प्राप्त करना है माने पंचेंद्रिय के विषय नहीं चाहिए, धन दौलत यश प्रतिष्ठा कीर्ति नहीं चाहिए, तो आत्मा चाहिए। ये पर्याय की तरफ से बात है, पर स्वभाव को तो देख, तो तू स्वयं आत्मा है। तो सत पोते छे दूर नथी, छता दूर छे मने जोइए छे एम भासे, खरेखर एज मोह छे। किसने सिलेक्शन किया था? अभिनंदन का पात्र, सच कहता हूं, मुझे पता नहीं है किसने सिलेक्शन किया। लेकिन बार बार पढ़ता हूं तो कहते यार क्या चीज लिखी है। लिफ्ट में ऊपर चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो, इधर चढ़ो उधर चढ़ो, सब जगह ऐसा है भाई। जे पर्याय देखो, वस्तु बेरूपे, द्रव्य अने पर्याय। हवे ये पर्याय बहिर्मुख छे अने अंतर्मुखाकार एटले चैतन्य स्वरूपे एनु परिणमन करवू, एनु नाम समाधि ने योग छे। इसके बाद एक पॉइंट लेता है 247 पेज पर, ये है बीच का पैराग्राफ, उसकी नीचे से तीसरी लाइन। निज एटले पोतानु स्वरूप भगवान ते केवू अखंड, आ हा हा, जेमा गुण गुणीनो खंड नहीं, जरा सूक्ष्म बात है भाई, ये आज समझ लो इतने दिन में पहली बार ये द्रव्यगुण पर्याय वाला पॉइंट आया, अने द्रव्य पर्याय नो द्वैत पण नहीं। ऐसा है, अभी दो धाराएं हम लोगों में, मुमुक्षुओं में, विद्वानों में, चर्चा में चलती। मैंने तो इसके ऊपर एक लेख भी लिखा है 5-7 पेज का, क्या है, शुद्धातम का लो आधार कहने की विधियां हैं चार। पोन्नूर में गोष्ठी हुई थी, उसमें पढ़ा था उसको, शुद्धातम का लो आधार कहने की विधियां हैं चार। यानी स्वानुभव के लिए, स्वसन्मुख होने के लिए चार तरह से कथन आता है, मुख्य चार है। पहला, पर्याय से लक्ष्य हटाकर पर्याय से भिन्न द्रव्य को देखना, ख्याल में आया, ये बहुत प्रसिद्ध है। ये तो परिणाम परिणम गया, मैं यूं का यूं रह गया, एक समय की पर्याय भी मैं नहीं हूं, इस तरह अपने को पर्याय से भिन्न देखना, ठीक है। दूसरा, द्रव्य और पर्याय में भेद ही नहीं करना। तो भेद नहीं करना मतलब पर्याय को मिला देना, पर्याय सहित द्रव्य को देखना, ऐसी लोगों को शंका होती है। 2-3 साल पहले मैं राजकोट में था, 10 लक्षण में, तो इसका बहुत मैंने खुलासा किया। जब अनुभूति होती है तो ये द्रव्य है, ये पर्याय है, ऐसा भेद दिखाई नहीं देता। वो अभेद एक चैतन्य मात्र की अनुभूति होती, समझ में आया, थोड़ी सूक्ष्म बात है। तो लोगों को लगेगा ये पर्याय द्रव्य को अभेद करके बात करते हैं, तो बहुत फिर लोगों को खुलासा। वहां अभी पर्याय और द्रव्य का भेद नहीं देखना और पर्याय से भिन्न आत्मा देखना, दोनों एक ही बात है। अभी तीसरी शैली और है, सामान्य पर्याय सामान्य में, ज्ञान सामान्य में त्रिकाली ध्रुव को देखना। वर्तमान ज्ञान सामान्य, ज्ञान विशेष नहीं, ज्ञान विशेष माने ये पुस्तक का ज्ञान, ये माइक का ज्ञान, ये ज्ञान विशेष, ज्ञाकार ज्ञान वो ज्ञान विशेष है, समझ में आया। ये जानन 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 मात्र, पर्याय में वो 15वीं गाथा, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और ज्ञाकार ज्ञान का तिरोभाव। तो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करेगा तो दृष्टि त्रिकाली पे चली जाएगी। ये 15वीं गाथा के प्रवचन में ये सब बातें आती। ये हमारे रजनी भाई को ये मैंने एक बार एक उदाहरण दिया था, उन्हें बहुत पसंद आया, आपको भी सरलता से समझ में आ जाएगा। ये चश्मा है ना, चश्मा ऐसे दूर रखो तो आपको कांच दिखाई देगा। अब यहां लगा लिया, अब क्या दिखेगा? कांच सामने है लेकिन कांच नहीं दिखेगा। कांच इतना ट्रांसपेरेंट है कि कांच के बाहर जो पदार्थ है उधर दृष्टि जाएगी, समझ में आया। ऐसे ज्ञाकार ज्ञान तो समझ लो कांच देखना है, और जो अकेले सामान्य ज्ञान को देखा ट्रांसपेरेंट जो है, तो उसमें पर्याय नहीं दिखेगी। वो पर्याय की खिड़की से, जैसे आप इधर बाहर देखते तो क्या दिखता है, हम इधर बैठे हैं ना, तो हमको ये दरवाजे का कांच नहीं दिखता है, कांच के बाहर वो भाई खड़े हैं, उधर दो फोटो लगे हैं, वो दिखाई देता है, है? तो ज्ञान में ज्ञान सामान्य का लक्ष्य करो तो दृष्टि ज्ञायक पर चली जाती। ये भी एक शैली है, ये तो बहुत लंबा विषय है। अभी तो 8-6 दिन हो गए ना, तो थोड़ा सैंपल में और खजाने में माल है, वो आना चाहिए ना थोड़ा और, है? अभी चौथा, विशेषों को सामान्य में डुबो दो। ये आज अपन ने जो प्रवचन सार में पढ़ा, 7वें कलश का अर्थ और उसका अर्घ वगैरह चढ़ाया, विशेषों को सामान्य में गर्भित कर दो, डुबो दो। डुबो दो माने उसमें देखो ही नहीं। ये 80वीं गाथा की टीका में, वो मोतियों सफेदी को मोतियों में गर्भित करना और मोतियों को हार में गर्भित करना, वो कुछ क्रिया में नहीं करना होता है, फीलिंग में आता है। जब आप हार खरीदेंगे मोतियों का, तो ये मोती इस कलर का है, ये इस कलर का है, ऐसा है वैसा है, वो सब आपको विकल्प जाल होगा। उसकी कीमत ऐसी है, वो इसको इस ढंग से गूंथा गया है, 3 व्हाइट के बाद में एक काला लगाया है, चाहे 4 व्हाइट के बाद में एक मरून लगाया है, ऐसा डिजाइन विजाइन सबका विकल्प होता है ना। और जब हार पहन लिया तो क्या होता है, केवल हार पहनने का आनंद मात्र होता है, फिर वो उसकी कीमत क्या है, कौन से ब्रांड का है, कौन सी दुकान का है, कितने मोती हैं, वो मोतियों का रंग क्या है, ये किसी पर विकल्प नहीं जाता। इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है भाई, सुनो, बड़ी मार्मिक, आनंददायक और सरल बात है। पांच इंद्रिय के विषय को भोगने की भी वही प्रोसीजर है। भोजन करने आप बैठो, जो चीज आपको पसंद है, तो जब वो मुख में जाएगी तो आप उसके स्वाद में ही लीन रहेंगे। फिर भेद का विकल्प खड़ा किया कि यार ये दूध पाक में तो बादाम डला है, वो इतने रुपए किलो की है, तो गया काम से हैं? उसमें है सब कुछ, होने पर भी उसका भेद खड़ा किया तो स्वाद नहीं आएगा। भेद में स्वाद नहीं आता। भेद का लक्ष्य छोड़कर वो वस्तु मात्र का लक्ष्य करे तो स्वाद आता है। जैसे वस्त्र में, आभूषण में, विषय भोग में, खाने में, पीने में, मैच देखने में, सिनेमा देखने में, वो कहानी उपन्यास पढ़ने में, हर चीज जो इंद्रिय का विषय है, मन का विषय है, उसमें भेद खड़ा किया तो आनंद की धारा टूट जाएगी। तो जब भाई साहब पर विषय की ये प्रोसीजर है, तो आत्मा तो और भी निराकुल, क्या बोलते हैं, निराली चीज है, उसकी भी ये प्रोसीजर। इसलिए वो बार बार कहते, देखो क्या आया, ये द्रव्य पर्याय नो द्वैत नहीं, अद्वैत आवी स्थिति ने सम्यक दर्शन कहे छे। अभी एक 248 पेज पर एक टॉपिक इसमें आया। अपने को तो घड़ी आप लोग ये फास्ट कर देते क्या? ऐसा लगता है ये अभी तो कुछ 5-10 मिनट हुए और ये तो आधा घंटा बताने लगी। पक्षपात करती है। मुझे आराम देती। 248 पेज में एक बड़ी मजेदार बहस, वो पूरे प्रवचन में चली, बाद में समय समय पर गुरुदेव ने बार बार उसको टच किया। इसमें जो लैंग्वेज है, परमानंद स्वरूप साथे निज कारण परमात्मा ने जोड़े छे। अभी प्रश्न ये है, आत्मा को पर्याय के साथ जोड़ना के पर्याय को आत्मा के साथ जोड़ना, इसका गुरुदेव ने बहुत रंग ले ले करके, आनंद ले ले करके खुलासा किया है। इसमें नीचे प्रश्न है, उसके ऊपर एक थोड़ा प्रेरणादायक बात है। 248 पेज पे बीच में बोल्ड में लिखा है, शुद्ध निश्चय उपयोग भक्ति वालो छे। मिला, आया इसमें, शुद्ध निश्चय उपयोग भक्ति वालो छे। अभी उसमें उद्गार देखिए गुरुदेव के, हा हा हा, एमा शुभ योग नथी, क्या परम भक्ति में शुभ योग या शुभ उपयोग नहीं है? शुद्ध निश्चय उपयोग, व्यवहार रत्न त्रय नथी, हवे आवू क्यारे करवा जाए, नवरा क्या थी थाय। फिर वो ही प्रेरणा है, नवरा क्या थी थाय, फुर्सत नहीं मिले, हजी यहां सामणवा मले नहीं लिए। मुझे ये कहना है, सामणवा मले नहीं, मले तो सामणे नहीं। सामणवा वैसे, पर वो जो अपना जो हार्ड डिस्क में जो मोबाइल रखा है ना, वो साइलेंट नहीं होता, वो चलता। जेब का मोबाइल तो यहां पे मान लो नोटिस लगा दिया, एक आदमी बिठा दे रहे, आप पहले मोबाइल बंद करके अंदर आइए, समझ में आया ना? वो कहां, ये शहर कहीं मैंने सुना था कि वो रजनी भाई ऐसा बोलते, किसी का मोबाइल चालू हो जाए ना बीच में, तो वो कहते भाई 100 रूपये उसमें डाल देना भंडार पेटी में। तो मंदिर को थोड़ी तो इनकम होवे, तुम्हारी भूल का लाभ मंदिर को तो मिले कम से कम। तो एक तो ये, तो वो भले बंद हो जाए, लेकिन अंदर जो मशीन चलती है विकल्प जाल की, तो वो एक घंटा शांति से, विद बाहर की कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बिल्कुल साइलेंट हॉल है, तो भी जो विकल्प जालों की जो तरंग उठती है वो सुनने नहीं देती। समझ में आया? ये नवरास नथी, अपन सब एक घंटा फुर्सत निकाल करके यहां बैठे हैं, तो भी सुनने की फुर्सत नहीं है। वो तो दुनिया भर का सोचेंगे इधर उधर। और मैं तो कहता हूं, जो वक्ता लोग हैं ना, वो कभी ईमानदार श्रोता नहीं बन सकते। गुरुदेव का प्रवचन सुने वो बात अलग है, लेकिन वो वक्ता क्या करेगा, वो किसी और का सुनेगा ना तो खुद का ही प्रवचन करने लगेगा मन में, इनकी जगह मैं होता तो मैं ये उदाहरण देता अभी यहाँ तो सब खुली बात है भाई, अपन सादर भी है ना, अपन तो है यहाँ, किसी से क्या छिपाना, क्या छल कपट है कि नहीं, ऐसा है साइकोलॉजी ऐसी है। वो इसने ये उदाहरण चूक गया, यहाँ इसको ये नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ ये ज्यादा लंबा कर, वो उसमें एडिटिंग करता रहेगा। वो वक्ताओं का ईमानदार श्रोता होना महापुरुषार्थ की बात है, समझ में आया? तो सामलवा मले नहीं। अभी और मार्मिक बात, तेना ज्ञान मा बात आवे नहीं, मतलब हम क्या कहना चाहते हैं ये आप समझ तो लो, फिर बाद में उसके ऊपर आप एग्री हैं कि नहीं एग्री हैं ये बाद की बात, आपको ये बात जमी के नहीं जमी, सत्य भाषित होती के नहीं होती, ये तो सेकंड स्टेप में आएगा, पहले ये जानो तो हम क्या कहते हैं। ये समझ लो, गुरुदेव के बारे में जिन लोगों ने गुरुदेव का विरोध किया उनने यही अन्याय किया। बहुत से लोग तो जानते हैं कि ये क्या कहते तो भी पक्ष के कारण विरोध करे, वो कल मैंने कहा था वो उसकी दुकान बंद होती। अभी बहुत से भोले प्राणी जानते भी नहीं, उनने ये कहा कि व्यवहार ये है, माने ये पूजा पाठ ये है, ये वृक्षशील संयम ये है, देखो ये पूजा पाठ छोड़ाते, देखो ये पूजा पाठ छोड़ाते, देखो ये पुण्य छोड़ाते हैं, ये व्यवहार को हे बताते। अरे व्यवहार को हे बताने का मतलब क्या है? पूजा पाठ छोड़ करके विषय कषाय में लगने का नहीं कहते हैं, वो धर्म है उसको धर्म मानने का निषेध करते। अभी बच्चे पूछ सकते हैं धर्म नहीं है तो क्यों करना। समझ में आया? जब धर्म नहीं है तो क्यों करना, ये तो तीन पोजीशन है भैया, अशुभ शुभ और शुद्ध। परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। ये भी शायद भागचंद जी का है, भागचंद जी का भजन है, बहुत अच्छा भजन है। जीवों की परिणति तीन प्रकार की, ऐसे टोडरमल जी ने पहले अधिकार में लिखा है। तो अशुभ से बच के शुभ में आता है, शुभ में ही तत्व निर्णय करता है, शुभ में ही आत्मा की महिमा आती है, वो उत्कृष्ट शुभ है। देखो लाखों करोड़ों का मंदिर बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल खोले, कॉलेज खोले, चैरिटी वर्क करे, उसमें तो हीन पुण्य बनता है भाई, उसमें कोई ज्यादा माल नहीं है, लेकिन तत्व का चिंतन करने में उत्कृष्ट पुण्य बनता है वो। फिर अपने को इष्ट नहीं है वो, लेकिन बंधे उसको क्या करे, भी उसको कैसे छोड़ दे रहे, वो तो बंधेगा ही, उससे उसको अंदर जाने के लिए राह मिलती है, उसका लक्ष्य छोड़ के अंदर में जाता है। समझ में आया? वो पहले का स्टेप है। तो गुरुदेव इस पे जोर देना चाहते हैं, ज्ञान मां बात आवे नहीं, माणस नहीं कहता मारी बात ध्यान मां तो ले, एम नहीं कहता मारी बात तारा ध्यान में तो ले, एम कहे छे। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि तुम सुनो और समझो। देखो श्रवण ग्रहण धारण निर्णय फिर अनुभव होता है। कितनी सीढ़ियां हैं, पहले श्रवण शांति से सुने, दूसरी तरफ उपयोग नहीं लगावे धंधा व्यापार में इधर उधर। अरे जब बैठे ही गया है एक घंटा, समझ में आया ना, तो फिर उपयोग दूसरी जगह ले जाने में फायदा क्या है, काम तो कुछ होना नहीं है उधर का, है तो यहीं का करो ना जहां बैठे हैं। लेकिन ये जीव खाने में भी शांति नहीं रखता, जो चीज खाएगा उसका आनंद नहीं लेगा, दूसरी चीज का सोचेगा, अभी अगले कौर में पापड़ लेना कि चटनी लेना कि क्या लेना, ऐसे लिखा है निर्जराधिकार में, उसका चिंतन करे। अरे जो खा रहा है उसमें उपयोग लगा, उसमें लगेगा ही नहीं, खाने की क्रिया अलग चलेगी और आगे के प्लानिंग अलग चलेगी कि नेक्स्ट। समझ में आया ना? ऐसा है श्रवण सुनना, ग्रहण मैंने समझाने सुनाने वाला क्या कह रहा है वो समझना, समझना माने ग्रहण, श्रवण ग्रहण धारण यानी फिर वो भूल नहीं जावे, वो अंदर समझ लो मेमोरी में सेव कर ले, वो फाइल सेव कर लेते ना, वैसे फाइल सेव कर ले रहे, उसको सुरक्षित रखे, उसमें वायरस नहीं घुस जावे। तो वो क्या हुआ धारण, फिर विचार करके डिसीजन पर पहुंचे, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, ये निर्णय। इसके बाद उसको महिमा आती है स्वरूप की और उसके बल से वो अंदर जाता है। अभी इसमें लास्ट अपन लेते हैं 248 पेज पर, वो बात आई कि द्रव्य को पर्याय के साथ जोड़ना कि पर्याय को द्रव्य के साथ जोड़ना। भाषा तो ऐसी है कि परमानंद स्वरूप साथे निज कारण परमात्मा ने जोड़े छे। बीच में जो मुमुक्षु भाई ने पूरा समझ लो 5-7 मिनट बीच बीच में प्रश्न भी किए, जब इसमें तो लिखा है द्रव्य को पर्याय के साथ में जोड़ना, तो उसका मतलब ये है कि द्रव्य तो त्रिकाल, ध्रुव, निष्क्रिय, अखंड, चिन्ह मात्र घन है, वो क्यों किसी के साथ जोड़ेगा। ऐसा है, एक सोगानी जी का एक वाक्य है, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे। बहुत ऊंची बात है भाई, स्वच्छंद होने की बात नहीं है, ऊंचा माल है। पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं क्यों किसी का ध्यान करूं। गजब है, मैं तो ध्येय तत्व हूं, जो ध्यान का विषय बने सम्यक दर्शन। मैं सम्यक दर्शन नहीं हूं और मुझे सम्यक दर्शन चाहिए भी नहीं, बल्कि मैं तो वो हूं जिसको देखने का नाम सम्यक दर्शन। एक छंद बोलता हूं, आप बताना कहां का है, जो गुजराती भाषी उनके लिए क्वेश्चन। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। क्या है वो, है नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान। मुझे ये बताना, जिसके दर्श वा जानने का, जिसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, कौन, मैं, पोते, जिसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, कौन, मैं, जिसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। हमारे राजेंद्र कुमार जी से बहुत सुना होगा आप लोगों ने, जब एक रतन अनमोल है तो रत्ना कर कैसा होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर हो। तो मैं रत्नाकर हूं कि रतन हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है, वो रत्नाकर नहीं है, वो तो रतन है। कहां मिलता है, कहां से प्रकट होता है, भगवान आत्मा में से। तो इस तरह से ये छंद कहां का है समीर भाई, मालूम, नए चक्र में डॉक्टर साहब ने मंगलाचरण में 5 छंद लिखे हैं, सबसे पहला छंद ये, उसमें पहले में भगवान आत्मा को, फिर पंच परमेष्ठी को, फिर निर्ग्रंथ गुरुओं को, फिर ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा, ऐसे 5 छंद हैं। एक शुद्ध विकार वर्जित, तो भले भाषा ऐसी हो कि द्रव्य को निराकुल परमानंद स्वरूप निज के साथ में परमात्मा को जोड़ना, ये वो पूछा ना, पर्याय ने द्रव्य में जोड़ भी कि द्रव्य ने पर्याय में जोड़, क्रिया किस में होती है, कार्य किस में होता है। गुरुदेव ने कहा पर्याय नु द्रव्य में जोड़ा, आमा तो एम लखू छे कि परमात्मा साथे जोड़ी ने, हां कीधू कारण परमात्मा द्रव्य ने। देखो एक बात सुनो ध्यान से, लास्ट कहता हूं, एक जो अच्छे अच्छे स्लोगन के वो निकाल देते ना लोग छोटे छोटे पोस्टर, उसमें मैंने पढ़ा था, 15-20 स्लोगन थे, अंतिम एक था, मुक्ति को त्रिकाली द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं है। तो बात तो सच्ची है, मुक्ति अपने स्वकाल में अपनी योग्यता से अपने षटकारक में पैदा होती है, पर तुमको मुक्ति की महिमा करनी है कि द्रव्य की महिमा करनी है। इसमें तो टोन ऐसी आती है कि मुक्ति द्रव्य को चुड़ा रही है, तू बैठ अपने घर, अंगूठा दिखा दे, मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, मुझे तेरी परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, भले वो द्रव्य से निरपेक्ष है, लक्ष्य द्रव्य का ही होता है, है? उसके इसको रिवर्स में ले लें कि द्रव्य को मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं है, तो इसमें द्रव्य की महिमा बढ़ी। ये लास्ट में लिया है ऐसा, वही निगोद में वही मुझमें वाली बात जो है ना, एक जगह इसमें आई है कहीं पर, अभी मुझे इतना ध्यान नहीं है, लास्ट में है। ये 255 पेज देखो जरा, 255 पेज दूसरा पैराग्राफ। अहीं तो कहे छे आत्म प्रयत्न सापेक्ष विशिष्ट जे मनोगति तेनो ब्रह्ममां संयोग थवो। आहा हा, आत्म प्रयत्ननी अपेक्षा वाली खास प्रकारनी चित्त परिणति जोयू, परिणति ने जोड़वी छे, परिणति ने आत्मा मां जोड़ावू। ये भी भैया व्यवहार का कथन है, वो अपन कोई पर्याय को पकड़ के उधर से उधर रख देते हैं, ऐसा नहीं है, वो तो सहज होती है। ध्रुव ने जोड़वू नथी, ध्रुव तो प्रभु सदा ध्रुव छे, गमे ते स्थिति हो पण ए तो चीज ध्रुव पड़ी छे, सिद्ध थाय तो पण सिद्ध ध्रुव छे, निगोत थाय तो पण ध्रुव छे। बोलो, कहने का आशय ये है कि पर्याय को द्रव्य की महिमा आनी चाहिए, कि ये इतना अनादि अनंत महिमावंत तत्व है कि कैसी भी पर्याय होवे, बंद की होवे कि मोक्ष की होवे। अरे नियम सार में तो यहां तक आता है कि मुझे वो अपूर्व अवसर में है ना, भव मोक्षे प्रत्ये वर्ते समभाव जो, मुझे उसमें सबसे ज्यादा मार्मिक पंक्ति कोई लगती है तो ये लगती, भव मोक्षे। श्रीमद जी को क्या है? संसार और मोक्ष में कोई फर्क नहीं दिखता, दोनों में समभाव, भव मोक्षे प्रत्यय, संसार हो कि मोक्ष हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर अपूर्व अवसर ये वो क्या रहे आपसे, ये भावना काहे को बाहर है? निर्ग्रंथ होऊंगा मैं, ऐसा आहार लूंगा, निर्दोष आहार लूंगा, बहु उपसर्ग करता प्रत्यपण क्रोध नहीं, पूरी गुण स्थान प्रक्रिया उसमें दिखा रहे, क्यों दिखा रहे? तुमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना सर, ये तो अज्ञानी है कि जिसको संसार और मोक्ष दोनों में कोई फर्क ही दिखाई नहीं देता। भैया ये द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की बात है, ये द्रव्य स्वभाव के बल से कहते, उसको तो मोक्ष वर्तमान में ही है। क्या कहा? जिसने मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा को देखा उसको वर्तमान में ही मोक्ष है, इसलिए बाहर की पर्याय में अभी संसार हो के मोक्ष हो उसका त्रिकाली द्रव्य उससे अनइफेक्टेड अप्रभावी रहता है, इसका नाम है। तो पर्याय कोई भी हो, मतलब वो पर्याय की अपेक्षा खत्म हो गई तो मोक्ष पर्याय प्रकट हो गई। ऐसे अद्भुत रहस्य इसमें है, थोड़ी चर्चा अपन ने की, अभी समय हो गया इसलिए यहीं विराम ले।